शांति अपना कौन सा समान याद है। हर एक समय के लिए अपना अपना स्वमान होता है। अभी अभी हम सभी गॉडली यूनिवर्सिटी में, ईश्वरीय विश्वविद्यालय में बैठे हुए हैं, बेहद की पाठशाला में। तो हमको क्या स्वमान रहना चाहिए? हम गॉडली स्टूडेंट हैं, और जब हमको यह स्वमान रहता है तो नेचुरली हम जो सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं उसके तरफ भी हमारा ध्यान जाएगा। तो यहाँ पर हम सभी विशेष रूप से रोज 4 सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, ज्ञान, योग, धारणा और ईश्वरीय सेवा। हर एक सब्जेक्ट का अपना अपना महत्व है और हर एक सब्जेक्ट एक दो से बढ़कर इम्पोर्टेंट भी है। आज हम आपको विशेष सेवा के सब्जेक्ट के बारे में, उसमें भी मनसा सेवा के बारे में कुछ एक बातें शेयर करेंगे। वैसे सेवा के सब्जेक्ट को हम जब देखते हैं तो सेवा भी हम विशेष रूप से अनेक प्रकार से कर सकते हैं। कम से कम बाप दादा के कहने के अनुसार अगर सोचेंगे तो 4 प्रकार की सेवाएं हम कर सकते हैं। सबसे पहले स्व की सेवा, दूसरा वाचा द्वारा अन्य आत्माओं को बाबा के संदेश पहुंचाने की सेवा, और तीसरा है यज्ञ सेवा, कर्मणा कर्मयोग, और चौथा है मनसा सेवा। आजकल बाप दादा की इशारों के अनुसार हम सबको मनसा सेवा की तरफ विशेष ध्यान देना होगा। वैसे तो जब तक ब्राह्मण जीवन है तब तक हम वाचा द्वारा अनेक आत्माओं को संदेश पहुंचाते ही रहेंगे, और यज्ञ सेवा भी हड्डी हड्डी देकर के, यज्ञ सेवा करके भी अपना प्रारब्ध बनाएंगे ही। परंतु ये सब करते हुए साथ साथ में मनसा सेवा करना बहुत बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी विश्व है और इतने सारे विश्व की आत्माओं को हम शरीर के द्वारा, वाचा के द्वारा संदेश नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए हमको जितना हो सके संकल्पों के द्वारा, शांति के शक्ति के द्वारा, मनसा द्वारा सेवा करने की कला हमको सीखना होगा। तो सबसे पहले आइए हम समझे कि मनसा सेवा कहाँ किसको जाता है। जैसे हम किसी को बाबा का संदेश देना चाहते हैं तो वाचा द्वारा हम उसको बाबा का ज्ञान सुनाते हैं, या किसी आत्मा को उमंग उत्साह चाहिए, किसी को हिम्मत चाहिए, किसी को किस प्रकार की मदद चाहिए, तो हम वाचा द्वारा उस आत्मा को समझा करके वो ताकत देते हैं। मनसा सेवा माना कि हम अपनी मन में ऐसे संकल्प हम उत्पन्न करें कि हमारा संकल्प की जो भावना है वो आत्माओं की सेवा करें। यानी हमारा मन दूसरों के मन की सेवा करे, उसको कहते हैं मनसा सेवा। जैसे आवाज द्वारा दूसरों को संदेश पहुंचता है, ऐसे ही संकल्पों की भावना, संकल्पों की आवाज दूसरी आत्माओं को पहुंच जाए। और आप समझते हैं कि संकल्पों की गति कितना तीव्र होता है, वाचा तो मैं यहां बोलूंगी तो यहां हाल के एंड तक ही पहुंच सकेगा माइक के बिना, इतना भी नहीं पहुंच सकेगा। परंतु संकल्पों की शक्ति इतना पावरफुल है, हम कहां पर भी बैठ करके किसी आत्मा की भी, कितने दूर भी हो, उस आत्मा की हम सेवा कर सकते हैं। परंतु सबसे पहले अगर हमको मनसा सेवा करने की कला सीखना हो तो हम अपनी मन की पहले सेवा करें। मनसा सेवा, हम अपनी मन का ही सेवा करें। जब तक हम अपनी मन की सेवा हम नहीं करते हैं, यानी हम अपने मन को अपना मित्र नहीं बनाते हैं, तो हमारा मन दूसरों के मन की सेवा नहीं कर सकता। एक बारी दादी जानकी ने एक मिसाल दिया था कि एक अगर आप एक नाव में जा रहे हैं पानी के ऊपर, इस तरफ से उस तरफ, तो जब तक नाव पानी के ऊपर है तो नाव तैरते हुए उस पार चला जाएगा। अगर बाय चांस उस नाव के अंदर एक छोटा सा सोराख है और उसके अंदर से पानी आना चालू हो जाए नाव के अंदर, तो क्या हो जाएगा? नाव वहां ही डूब जाएंगे। तो ऐसे ही हमारा मन में भी अगर व्यर्थ संकल्प है, अब तक हमारा मन में व्यर्थ संकल्प है, तो वो व्यर्थ संकल्प चलते हुए मन दूसरों के मन की सेवा नहीं कर सकता। तो इसके लिए सबसे पहले हमको ये अटेंशन रखना होगा कि मन को क्वालिफाइड बनाएं। जब हमारा मन क्वालिफाइड हो जाएगा तो हमको ये सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमको मनसा से किसी की सेवा करनी है। तो इसलिए सबसे पहले हम अपने मन की सेवा करने के लिए मन में जो संकल्प चलता है उसकी क्वालिटी को हम बढ़ाएं। माना जब तक हमारे मन की संकल्पों में श्रेष्ठता नहीं है, तब तक वो मन दूसरों की मन की सेवा नहीं कर सकता। इसलिए विशेष हमको तीन अटेंशन देना है अपनी मन की सेवा करने के लिए। तो सबसे पहले अपने मन को अपना मित्र बनाना है। तो जब हम अपने मन को हम अपना मित्र बनाते हैं तो मन हमारे सहयोगी बन जाते हैं। और दूसरा, व्यर्थ संकल्पों को संपूर्ण रूप से विराम देना होगा। ऐसा नहीं कि किसी किसी के लिए व्यर्थ संकल्प चलता है, किसी के लिए नहीं चलता है, नहीं। एक बारी दादी ने कहा था कि अगर हम मनसा सेवा करना चाहते हैं तो हमारे मन में किसी भी आत्मा के लिए, वो कोई भी आत्मा हो, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, कोई भी हो, किसी के प्रति भी हमारे मन में व्यर्थ संकल्प नहीं आना चाहिए, नेगेटिव थॉट्स नहीं आना चाहिए। अगर अब तक भी मन में ऐसे संकल्प चलता है तो हमारा मन क्वालिफाइड नहीं है। भले हम जास्ती आत्माओं के प्रति हमारे मन में अच्छा विचार चलता है, कोई कोई आत्माओं के लिए इतना अच्छा विचार नहीं चलता है, तो भी हमारा मन क्वालिफाइड नहीं होगा। क्योंकि आप देखिए, एक बकेट में पानी है या दूध है, अगर उस दूध में एक बूंद की पॉइजन पड़ गया तो वो सारा दूध भी यूजलेस हो गया ना। तो अगर हमारे मन में भी अगर एक दो आत्मा के लिए भी अगर नेगेटिव थॉट्स है, व्यर्थ संकल्प है, तो हमारा मन क्वालिफाइड नहीं है। इसलिए हमको इतना ध्यान देना पड़ेगा कि हमारे मन में किसी के प्रति भी न व्यर्थ हो न नेगेटिव थॉट्स हो। तो ऐसी इन तीन बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो पहले हम अपने मन को क्वालिफाइड बनाते हैं, तो फिर ऑटोमेटिकली हमारे मन से जो भी फीलिंग्स निकलेगा, किसी के लिए भी जो भी भावनाएं निकलेंगे उस आत्मा को उसी समय वो पहुंच सकता है। तो मनसा सेवा करने के लिए हमारे जीवन के अंदर कौन सी धारणा चाहिए ये भी हमको नोट करना है। पहले तो हम अपने मन को क्वालिफाइड बनाएं। मन को क्वालिफाइड बनाने के बाद सबसे पहली धारणा चाहिए हमारे अंदर शांति की शक्ति को इकट्ठा करना, जमा करना है। मनसा सेवा माना ही संकल्पों के द्वारा सेवा। तो और शांति की शक्ति के बिना अगर हमारे अंदर शांति की शक्ति जमा नहीं हुई है तो हम अपनी संकल्पों को इतना दूर तक पहुंचा नहीं सकते। संकल्पों की भाषा ही मनसा सेवा है। तो हम ये ध्यान रखें कि सारे दिन में जितना हो सके उतना शांति की शक्ति हम जमा करते जाएं। और दूसरा, मनसा सेवा के लिए हमारे अंदर एकाग्रता की भी शक्ति चाहिए, क्योंकि हम किसी के लिए भी शुभ भावना रखते हैं, शुभ कामना रखते हैं, परंतु उसमें एकाग्रता नहीं है तो उसमें शक्ति न होने के कारण वो संकल्प बिखड़ जाएगा, वो उस आत्मा तक पहुंच नहीं सकता है। तो दूसरा हमको धारणा चाहिए एकाग्रता की शक्ति। और तीसरी बात है, हमको एकांतवासी होने का जो इंटरेस्ट है, एकांत पसंद होना चाहिए, क्योंकि जब तक हम एक के अंत में नहीं चले जाएंगे, जब तक हमारे अंदर एकांत में रहने का इंटरेस्ट नहीं होगा तो हम वो सेवा दिल से नहीं कर सकते। एकांतवासी का मतलब ये नहीं कि हम कोई घर बार छोड़ करके, परिवार को छोड़ करके जंगल में चले जाए, नहीं, परंतु एक के अंत में सूक्ष्मता में जाने का हमारे अंदर वो धारणा चाहिए। जितना हम एकांतवासी होंगी, जितना हमारे अंदर एकाग्रता की शक्ति होंगी, जितना हमारे अंदर, जैसे हमने बताया कि शांति की शक्ति होंगी, उतना हम अपने मनसा द्वारा दूसरों के मन की सेवा हम कर सकते हैं। और चौथी बात, विशेष मनसा सेवा के लिए हमारे अंदर निस्वार्थ भावना चाहिए, दातापन की भावना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारे अंदर ये अंदर से दातापन की भावना, हमको इतना मिला है, हमको जो मिला है बाबा से वो सर्व आत्माओं को मिले, ये बेहद की भावना, ये दातापन की भावना, निस्वार्थ भावना जब तक हमने धारण नहीं किया है तब तक नेचुरली जो हमारे अंदर से शुभ भावना, शुभ कामना दूसरी आत्माओं के प्रति निकलता है वो नहीं पहुंच सकेगा। तो इसलिए हम ये चेक करके देखें कि क्या हम मनसा सेवा उसी आत्मा के लिए हम शुभ भावना भेजते हैं जिसका हमारे साथ संबंध है, जिसका हमारे साथ कोई व्यवहार चलता है, उसके लिए हमारे अंदर शुभ भावना है या सारे विश्व के लिए। तो हमारा दिल इतनी बड़ी होनी चाहिए और हमारी बुद्धि इतनी बेहद में रहनी चाहिए, तो तभी हम अपने मन में जो भावना उत्पन्न करते हैं उसी समय उन आत्माओं को वो पहुंच जाएगा। तो इसलिए अपनी मन को बहुत पवित्र रखना है, संकल्पों की क्वालिटी एकदम श्रेष्ठ। तो श्रेष्ठ संकल्प मेरा है या नहीं वो हम कैसे चेक करके देखेंगे? अगर हमारे संकल्पों में श्रेष्ठता की क्वालिटी है तो हमको ये सोचना भी नहीं पड़ेगा कि हमको मनसा सेवा करनी है। जैसे सूरज है ना, तो सूरज रोज उदय होता है, तो ऑटोमेटिकली वो अपना सकाश देने का काम करता है, सबको कहां पानी सुखाने का भी काम करता है, कभी कहां पानी बरसाने का भी काम करता है। यानी उनको सोचना नहीं पड़ता है कि मेरे को अभी देना है। तो हम भी मास्टर सूर्य के समान बेहद में अपने अंदर सब कुछ, सर्व शक्तियां, सर्व दैवी गुण सब कुछ प्राप्त है और हम भरपूर हैं, संतुष्ट हैं। ऐसी जब हमको फीलिंग होता है ना, तो ऑटोमेटिकली जिनको लेना है वो लेते जाएंगे। जैसे सूरज उदय होता है तो वो कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है कि इसको रोशनी देना है, इसको इतना देना है, जिनको लेना है वो लेते जाते। तो हमको भी अपने संकल्पों की क्वालिटी को श्रेष्ठ बनाते हुए बुद्धि को बेहद में रखना है, हद से निकल जाना चाहिए। मेरा जिज्ञासु है, मेरा सेंटर है, मेरा देश है, जब तक ये मेरा हद में है ना, तब तक हम मनसा सेवा नहीं कर सकते। नहीं, कई बार कई ब्राह्मण ये कोशिश करते कि हम फलाने को योगदान दे रहे हैं, फलाने को शुभकामना भेज रहे हैं, ये सोचना भी हद की सोचना है। तो जब तक हम ये सोच रहे ना कि इसको देना है, दे रहे हैं, उसको नहीं पहुंचेगा। बस हम अपने अंदर ऐसे महसूस करें कि मुझे जो कुछ चाहिए था बाबा से सब कुछ मिल गया है, कि बस अभी इस यही भावना मन में कि जो मुझे मिला है वो सबको मिल जाए। तो अगर ये हमारे अंदर निस्वार्थ भावना है तो सचमुच जिस समय हम संकल्प करते हैं उसी समय उन आत्मों को वो पहुंच सकता है। तो इसके लिए संकल्पों में चार बातें होनी चाहिए। संकल्प शुभ भी हो, संकल्प शुद्ध भी हो, संकल्पों में शक्ति भी हो और संकल्पों में कल्याण की भावना भी हो। जब ये चारों बातें इकट्ठा होगा तभी हमारे संकल्प की क्वालिटी श्रेष्ठ कहा जाएगा और श्रेष्ठ संकल्पों की जो वाइब्रेशन है वो ऑटोमेटिकली दूसरों तक पहुंच जाता है। तो इसके लिए अपने मन को हमको संभाल करना है, क्योंकि और कुछ हमको अटेंशन नहीं कि हम अपने मन को हम चलाएं, मन हमको न चलाएं। तो मन के मालिक होकर के हम मन को चलाते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर संकल्पों की शक्ति इकट्ठा हो जाता है और जितना हमारे संकल्पों की शक्ति जमा होता जाता है उतना दूर तक वो संकल्प पहुंच सकता है। तो इसलिए बाबा ने विशेष हम बच्चों को होमवर्क दिया था दिसंबर में कि ये हम चेक करके देखें कि संकल्प क्या स्वप्न में भी व्यर्थ न आवे। व्यर्थ संकल्प आया माना बुद्धि में सोराख हो गया। तो जो कुछ हमने बाबा से प्राप्त किया वो निकल जाएगा तो हमारे अंदर शक्ति नहीं रहेंगी। तो इसके लिए हमको विशेष अपने मन को मालिक होकर के चलाने की अटेंशन भी रहे और दूसरा हमारी बुद्धि हम इतना क्लियर रखें, बुद्धि इतना स्पष्ट हो जो बाबा हमको देता है करंट, बाबा हमको जो शक्ति दे रहा है वो हम ले सके। अभी भी बाबा ने मुरली में कहा ना कि जितना हम अपना संबंध बाबा के साथ रखते हैं, बैटरी चार्ज करते हैं, उतना शक्ति हम जमा करते हैं। जो जमा की हुई शक्ति है फिर उसको हम योग द्वारा अन्य आत्माओं को दे सकते हैं। तो इसके लिए हमको ये अटेंशन रखना है कि सर्व संबंध और सर्व प्राप्ति एक बाप से हो। अगर कुछ संबंध हम बाबा के साथ रखते हैं कुछ संबंध अभी तक भी मोह ममता के कारण अन्य आत्माओं की तरफ हमारी बुद्धि चली जाती है तो हमारा मन शक्तिशाली नहीं रहेगा। तो मन को शक्तिशाली बनाने के लिए मनमनाभाव की स्थिति में रहना जरूरी है। तो मनमनाभाव की स्थिति में रहने का मतलब है कि सर्व संबंध और सर्व प्राप्ति एक बाप से हो। जब तक हम ये सर्व प्राप्ति एक से अनुभव नहीं करते हैं तो बुद्धि इधर उधर भटकती रहेंगे। ऐसे भटकती हुई बुद्धि खाली मन मनसा सेवा नहीं कर सकते। इसके लिए पवित्रता बहुत जरूरी है। जितना जितना हमारे अंदर पवित्रता की धारणा होती है उतना ही हमारे संकल्पों की शक्ति, कहते हैं ना कि लेजर जैसे वो किरणों के समान संकल्पों की भावना दूसरे आत्माओं तक पहुंच सकता है। आजकल हम देखते हैं ना टेलीविजन, एक जगह पर कोई कुछ कर रहा है तो सारे विश्व अपने अपने घर में बैठ करके वो दृश्य देख सकते। तो ये साइंस की कमाल है ना। आपने सिर्फ टेलीविजन ऑन कर दिया और जो चैनल आप देखना चाहे जिस देश में भी वो कार्यक्रम चल रहा हो तो आप घर में देख सकते हो। तो वो कमाल किसकी है? साइंस की। पर साइंस का भी आधार क्या है? साइलेंस। तो इसलिए हमको भी अपने मन बुद्धि को एकदम शांत रखना सिखाना है। क्योंकि मनसा सेवा एक प्रकार से हम ये भी कह सकते हैं योग बल की सेवा। तो योग बल हमारे अंदर कैसे जमा होगा? एक तो आत्मा का बल और दूसरा परमात्मा का बल। ये दोनों बल हमारे अंदर जब भी जमा होंगे तो ऑटोमेटिकली वो योग बल मनसा सेवा ऑटोमेटिकली करेगा। तो इसके लिए हमको जब भी हम बाबा की याद में बैठते हैं ये चेक करके देखना है कि अभी तक भी हमको मन बुद्धि भटकता है, फिर उसको वापस ले जाना है, फिर बाबा के साथ बुद्धि को लगाने में मेहनत करनी पड़ती है, या हम नेचुरली हम बाबा की याद में समा सकते हैं। तो योग बल के बिना मन शक्तिशाली नहीं होगा। तो शक्तिशाली मन न होने के कारण हमारा संकल्प दूसरों के प्रति नहीं पहुंच सकता। और बाबा ने एक बारी कहा था मनसा सेवा का सहज साधन है, बहुत सिंपल मेथड है, अपने लिए सदैव हम शुभ चिंतन करें और दूसरों के प्रति हम सदा शुभ चिंतक रहें। बस यही आधार है। अगर हम अपने लिए ही शुभ चिंतन नहीं कर सकते तो दूसरों का शुभ चिंतक कैसे बनेंगे? तो अगर हम कभी अपने लिए शुभ चिंतन करते हैं, कभी मन में दूसरे प्रकार का विचार आ जाता है तो दूसरों के लिए शुभ चिंतक नहीं बन सकते। तो इसके लिए हम अपने ऊपर ही अपने को दया करना चाहिए। जब हम अपने ऊपर ही दया करते हैं तो हम अपने लिए शुभ चिंतन कर सकते। तो शुभ चिंतन करने के लिए भी हमारे पास ज्ञान की खजाना चाहिए, नहीं तो किस आधार से आप शुभ चिंतन करेंगे? खाली मन शैतान का घर है ना। तो अगर अपने मन में अपने लिए ही सदैव शुभ चिंतन करना चाहते हैं तो हमारे पास इतना ज्ञान का खजाना इकट्ठा होना चाहिए। तो वो खजाना कहाँ से मिलेगा हमको? रोज मुरली सुनने से। जिनको मुरली सुनने का शौक है, मुरली सुनने पर ध्यान है, तो वो अपने अंदर ज्ञान की खजानों को जमा करेंगे और जितना जितना पॉजिटिव शक्ति यानी ज्ञान का खजाना माना पॉजिटिव पावर अपने अंदर जमा होता है उतना ऑटोमेटिकली हम अपने बारे में शुभ चिंतन करेंगे। और जितना हमारे अंदर स्वचिंतन शुभ चिंतन आत्मचिंतन करने की ये आदत होंगी ऑटोमेटिकली हम दूसरों के लिए शुभ चिंतक बन जाएंगे। वो हमारे बारे में कोई भी प्रकार का चिंतन करे, पर हम उस आत्मा के लिए सदैव शुभ चिंतन। तो मैं समझती हूँ मनसा सेवा हम स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए ना। कई बार हम क्या करते हैं कि हम जिसके साथ रहते हैं उसकी सेवा नहीं करते, जिस आत्मों के संपर्क में आते हैं उसको छोड़ देते हैं, बाकी हम बैठ करके विश्व की आत्माओं को शुभ भावना भेजने की कोशिश करते, वो काम नहीं करेगा। चैरिटी बिगिन्स एट होम। तो पहले पहले आप अपनी मन की सेवा कीजिए, फर्स्ट स्टेप। आप अपने बारे में अपने मन में ही व्यर्थ संकल्प करना बंद करके अपने बारे में शुभ चिंतन करना सीखे, अपने ऊपर दया करे, अपने ऊपर आशीर्वाद करे, तो फिर दूसरा स्टेप आप जा सकते हैं जिसके साथ आप रहते हो रात दिन, सेवा साथी है या फैमिली मेंबर्स है, एक घर में रात दिन रहते हैं, उसके प्रति आप ये प्रयोग करके देखें। भले आप वो आपके साथ कैसे भी व्यवहार करे, पर आप अपने चिंतन को बदले नहीं, क्योंकि पॉजिटिव पावर में इतनी शक्ति है, नेगेटिव को खत्म कर देगा। कल भी बाबा ने स्लोगन में कहा था ना, शुभ संकल्पों की स्टॉक इकट्ठा करेंगे तो नेगेटिव थॉट खत्म हो जाएगा। तो हम दूसरा स्टेप ये प्रयोग करके देखें कि जिसके साथ हम रहते हैं, जिसके साथ सेवा करते हैं, उसके प्रति हमारे मन में क्या भावना है, क्या फीलिंग्स हैं। फिर तीसरा स्टेप है जो संपर्क में आते हैं रोज, स्टूडेंट्स है, संबंध संपर्क वाले हैं, रोज हम उनसे मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, तो ऐसी आत्माओं के प्रति हम प्रयोग करके देखें। संबंध में हम जानते हैं ना, ब्राह्मण परिवार में भी किसी किसी के साथ हमारा हिसाब किताब होता है, तो वो तो चुकतू करना ही पड़ता है, और हिसाब किताब चुकतू करते हुए भी हम अपनी भावना उसकी आत्मा के प्रति ना बदले। हमने हिसाब किताब बनाया पिछले जन्म में, मुझे चुकतू करना है, पर उसके कारण हमारी भावना किसी आत्मा के प्रति बदले नहीं। तो तीसरा स्टेप है संपर्क संबंध वालों के साथ हम ये प्रयोग करके देखें कि हमारी शुद्ध संकल्प, हमारी श्रेष्ठ संकल्प उस आत्मा की वृत्ति दृष्टि को कैसे बदल सकता। और बाद में है चौथा स्टेप विश्व की आत्माएं, जो हमको पता ही नहीं है वो कौन है, हमने देखा भी नहीं वो कहाँ रहते हैं, तो ऐसी आत्माओं को ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगा। तो पहले चालू करना है अपने आप से। कई एक बारी किसी ने पूछा था दादी से, मैं ना किसी के लिए सदैव शुभ कामना रखती हूँ, भावना अच्छी रखती हूँ, परंतु देखती हूँ वो काम ही नहीं कर रहा है तो मैं थक जाती हूँ, फिर उसके बाद जैसे ही सोचते थे वैसे ही चालू कर देते। तो दादी ने कहा था कि इसमें भी हमारी बेहद में बुद्धि चाहिए। ऐसा नहीं कि 10 दिन किसी की मनसा सेवा किया, अच्छी भावना रखी, फिर 10 दिन में रिजल्ट नहीं देखा तो जैसे वैसे ही चालू कर दिया, नहीं, ये भी स्वार्थ हो गया ना। आपने एक्सपेक्टेशन से किया तो फिर आपको उसका रिटर्न नहीं मिलेगा। तो कई बार 10 साल भी लगेगा, कई बार 20 साल भी लगेगा, परंतु अगर हम निस्वार्थ होकर के करते रहेंगे तो आज नहीं तो कल उसका रिजल्ट जरूर निकलेगा। अभी देखिए हम सभी यहाँ बैठे हैं कि हम किसके आह्वान के आधार से यहाँ बैठे हैं। बाबा जब साकार में थे तो हम सब आत्माओं को बाबा ने आह्वान किया था, तो बाबा की जो मनसा सेवा कितनी सालों के पहले आज हम सबको जन्म दिया ना, तो कभी हमको ये शुभ भावना, शुभ कामना किसी के लिए रखते हैं किसी के प्रति शुभ चिंतक बन करके रहती से उसमें थकना नहीं है। अगर थकेंगे तो हम बीच में छोड़ देंगे। और दूसरा भी एक सीक्रेट है, कई बार हम सोचते हैं चलो इसी आत्मा के प्रति हम मनसा सेवा करेंगे, मैंने बहुत कोशिश किया है पर वो बदलता नहीं है, फिर भी हम कोशिश करेंगे। तो उस आत्मा का कोई न कोई अवगुण हम वृत्ति में रख देते हैं, फिर उसके बाद हम उस आत्मा को मनसा द्वारा सेवा करने की कोशिश करते हैं पर उस आत्मा को वो पहुंचेगा नहीं, क्योंकि आपके मन में उस आत्मा के प्रति जो वृत्ति है ना वही वातावरण बनता है। तो इसलिए जब तक आपने अपनी वृत्ति को परिवर्तन नहीं किया है तो आपकी शुभ भावना उस तक नहीं पहुंच सकेगा। तो इसके लिए कभी भी किसी का भी अवगुण हमको अपनी वृत्ति में नहीं रखना है। आपको याद है भक्ति मार्ग में जब भगवान के सामने आप जाते थे तो आप भगवान को क्या कह देते, हे भगवान हमारे अवगुण चित्त पर नहीं रखना। क्योंकि हम जानते थे ना हमारे में अवगुण है, अगर भगवान चित्त पर रख देगा तो हमको भगवान से सकाश कैसे मिलेंगे। तो ऐसे ही हम भी किसी का भी अवगुण हम अपने वृत्ति में न रखें, तभी हम उस आत्मा की मनसा द्वारा सेवा कर सकते हैं। तो सबसे पहले है योगदान, आत्मा बल दे। जैसे बाबा कहते ना कोई गिर रहा है तो गिरने वालों को हाथ दे करके उठाना चाहिए ना। कोई हिम्मत हार लिया है, किसी के अंदर उमंग उत्साह खत्म हो गया है, तो ऐसे आत्माओं को मनसा द्वारा कैसे सेवा करेंगे। तो उस आत्मा को उमंग उत्साह दिलाओ, उस आत्मा को हिम्मत दो। ऐसे नहीं कि वो गिर रहा है तो थोड़ा और धकेल करके उसको पूरा ही गिरा दो, तो क्या हो जाएगा, हमने न उसकी कोई प्रकार की सेवा की नहीं। तो इसके लिए हमको अपने अंदर संपूर्ण पवित्रता चाहिए। सिर्फ काम विकार से हम मुक्त हो गए माना हमारे अंदर पवित्रता आ गई, नहीं। कोई भी विकार का ना अंश हो ना वंश हो, तभी हम हमारी मनसा अन्य आत्माओं की सेवा करने का लायक बन सकता है। तो इसके लिए आप सोच सकते हैं ना कि हमको अपने चिंतन के ऊपर, अपने सोच के ऊपर कितना हमको अटेंशन रखना है ना। कभी भी हमारी सोचने की जो क्वालिटी है उसको घटिया नहीं बनाना, साधारण नहीं बनाना है और व्यर्थ नहीं बनाना है, अयथार्थ नहीं बनाना है, तो फिर ऑटोमेटिकली बाबा हमको यूज करेगा अनेक आत्माओं को मनसा द्वारा सेवा कराने के लिए। जब सकाश की बात आती है ना, तो वास्तव में सकाश देने वाला एक भगवान ही है। जब सकाश हम सोचते हैं वो शक्ति एक सर्वशक्तिवान बाप के पास ही है। सकाश का क्या मतलब होता है कि सब शक्तियां, सब गुण, सब प्रकार की एनर्जी इकट्ठा जिसके पास हो वही वो किरणाएं, वो शक्ति की किरणाएं किसी आत्मा को दे सकते। तो मैं समझती हूँ सबसे पहले सकाश क्या होता है उसको हमको समझना है। सकाश कोई मांगने से नहीं मिलता है, सकाश कोई शब्दों से नहीं दिया जाता है। हमको एक बारी अनुभव याद आता है, हम लोगों ने सुना है ना, दादा विश्व किशोर जो यज्ञ के बहुत बाबा के अनन्य बच्चे थे, वो जब बीमार हो गए थे बॉम्बे में, जब साकार बाबा को मालूम पड़ा कि बच्चा बीमार है और बहुत तबीयत ठीक नहीं थी, रात को नहीं सोया था, तो बाबा ने मधुबन से उस आत्मा को सकाश भेजा। वनम शब्दों से कुछ नहीं, परंतु वो शक्ति की, वो शांति की, वो किरणें अपने मन से उस आत्मा को भेजा, तो उसको सारी रात दर्द से दूर होकर के अच्छी नींद की। तो ये सकाश देने की जो शक्ति है वो एक भगवान के पास ही है, और जो भगवान समान बन जाते हैं, बाप समान बन जाते हैं, ऐसे आत्माओं के पास हो सकता है। तो सबसे पहले हमको क्या पुरुषार्थ करना है, सकाश लेने के पात्र बनने का पुरुषार्थ करना है। जब ही हम सकाश लेने के पात्र बनेंगे तो ऑटोमेटिकली देने का काम हो जाएगा। तो वो सकाश यानी वो सूक्ष्म परमात्मा की किरणें, शक्ति की, शांति की, सर्व गुणों की वो किरणें हमको प्राप्त हो, उसके लिए हमको क्या करना है? सबसे पहले हमारी बुद्धि में, बुद्धि एकदम दिव्य हो, एकदम क्लियर, जैसे लाइन क्लियर होता है तो टेलीफोन सुनाई देता है ना, तो ऐसी हमारी बुद्धि में इतनी दिव्यता हो। और दूसरी बात कि हमारे जीवन में इतनी पवित्रता हो, अव्यभिचारी याद, अव्यभिचारी प्यार बाबा के साथ हो। और तीसरा एक बल, एक भरोसा। वैसे तो हम सभी कहते हैं मेरा तो एक बाप दूसरा न कोई, फिर भी कोई भी बात जीवन में ऐसे आ जाती है तो हम क्या करते हा? कोई न कोई का सहारा ढूंढ लेते हैं। परंतु अगर ये सकाश बुद्धि को लेना है, परमात्मा की बुद्धि से, परमात्मा है बुद्धिवानों की बुद्धि, तो उनके द्वारा जो किरणें निकलती हैं वो मुझ आत्मा की बुद्धि तक पहुंचे, तो उसके लिए हमको क्या अटेंशन देना है? बुद्धि के ऊपर कोई भी प्रकार का प्रभाव न हो, कोई भी प्रकार का दबाव न हो, कोई भी प्रकार का प्रभाव न हो। अगर कोई भी प्रकार की इन्फ्लुएंस है बुद्धि के ऊपर, हम सकाश लेने के पात्र नहीं बन सकते। इसलिए हमको बुद्धि की बहुत बहुत संभाल करनी है, क्योंकि माया भी आती है बुद्धि में ही, माया को भी पता है कहाँ आना चाहिए, संशय भी बुद्धि में आता है ना, निश्चय भी बुद्धि को होता है पर संशय भी बुद्धि में आता है। बुद्धि के ऊपर ही प्रभाव पड़ता है, किसी के ऊपर नफरत, किसी को ज्यादा पसंद करना। तो जब तक हम अपनी बुद्धि को इन सब प्रभाव या दबाव से दूर नहीं रखते, तो वो प्रकाश की किरणें, वो विशेष लाइट एंड माइट, वो जो बाबा दे रहा है वो हम नहीं ले सकते। और चौथी विशेष धारणा चाहिए, बहुत समय से हम आज्ञाकारी, ईमानदार, वफादार रहे तो ऑटोमेटिकली हम विश्वास पात्र बनेंगे ना। तो विश्वास पात्र आत्माओं को ही सकाश प्राप्त हो सकता है। तो सबसे पहले सकाश को समझने के लिए मैं एक उदाहरण देना चाहती हूँ। जैसे आप समझो, अचानक कोई इलेक्ट्रिक वायर को हाथ लगा देते हैं, तो एक सेकंड में आपके शरीर में कितना करंट पहुंच जाता है? आप लोगों को अनुभव हुआ होगा ना, किसी किसी को वो करंट जो लगता है ना, वो आपको फेंक देता है, अपने तरफ नहीं खींचता है, वो आपको वहां से दूर फेंक देता है। वो सकाश जो मिलता है वो भी ऐसी शक्ति है, एक सेकंड में आत्मा को परमात्मा की तरफ खींच लेता है। तो वो अनुभव हम कभी भूल नहीं सकते, क्योंकि जब हम अपनी बुद्धि को भगवान के ऊपर सरेंडर कर देते हैं ना, संपूर्ण समर्पण बुद्धि हो जाते हैं, तो उस बुद्धि की संभाल परमात्मा सर्जन के रूप में करता है। उस आत्मा को जो चाहिए, शक्ति चाहिए, शांति चाहिए, जो कुछ चाहिए उस आत्मा को, उस परमात्मा की तरफ से ऑटोमेटिकली मिल जाता है। तो सबसे पहले हम लेने का तो पात्र बन जाए, क्योंकि बाबा तो कहते हैं ना कि दया कृपा मांगने से नहीं मिलेगा, वरदान मांगने से नहीं मिलेगा, हमको वरदान लेने का पात्र बनना है ना। ऐसे ही सकाश भी मांगने से नहीं मिलता है, परंतु हम अपनी बुद्धि को लेने का पात्र बनाएं। तो जब हम ऐसी परमात्मा के समान, निराकार बाप के समान, साकार बाप के समान बन जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर सब शक्तियां, सब दैवी गुण, सब प्रकार की जो कुछ चाहिए वो सब कुछ है, तो ऑटोमेटिकली हम बेहद में चले जाएंगे ना। तो हमारे द्वारा जिसको जो चाहिए वो मिलता जाएगा। तो इसके लिए हमको विशेष ये जो शरीराभिमान है, बॉडी कॉन्शियसनेस है, देह अहंकार है, देह भान है, उसको संपूर्ण रीति से छोड़ना होगा। क्योंकि जब तक हम ये देह के बंधन में बांध करके अपने को बिठाते हैं, तो हम उस किरणों को ब्लॉक कर देते हैं, हमारे तक नहीं पहुंच सकता। तो इसके लिए बाबा बार बार हम बच्चों को साकार मुरली में, अव्यक्त मुरली में यही याद दिलाते रहते हैं, अपने को आत्मा समझ करके बाबा को याद करो। वैसे तो भक्ति मार्ग में भगवान को याद करते ही थे ना, दुख में तो सभी याद करते ही थे, परंतु नई बात हमने यहाँ क्या सीखा, आत्मा समझ करके भगवान को याद करना। क्योंकि जब तक आत्मा अभिमानी नहीं है, तब तक परमात्मा के संबंध यथारत रीति से जुट नहीं सकता। तो यथारत रीति से जुटेगा तभी उनसे शक्ति लेंगे, वो शक्ति इतना अंदर हमारे अंदर जमा हो जाए, वो सर्च लाइट का काम करे। जब सर्च लाइट का काम करेगा फिर वो सकाश बन सकता है। तो इसके लिए हमको विशेष अटेंशन क्या रखना है कि अपने ऊपर दया करने का, अपने ऊपर रहम करने का, तभी तो हम दूसरों के ऊपर दया कर सकते। तो हम कैसे समझे कि हम अपने ऊपर दया कर रहे हैं? तो अपने ऊपर दया करना माना अपने अपना ही शुभ चिंतन करना है, अपने लिए शुभ चिंतन रहना है, स्वचिंतन में रहना है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, स्वमान में रहना है। तो जितना जितना इन सब का हम अभ्यास करेंगे, तो ऑटोमेटिकली हम दूसरों के ऊपर, जो भी हमारे संपर्क संबंध में आते हैं, उनके ऊपर हम दया कर सकते हैं। तो इसके लिए भले हम अभी वाचा द्वारा बाबा का संदेश जितना तक हो सके पहुंचाते रहेंगे, पर साथ साथ ये भी अभ्यास अभी से हमको करना है। इसलिए बाबा ने विशेष ड्रिल का जो होमवर्क दिया है सारे दिन में, बीच बीच में, ये भी एक मनसा सेवा का साधन ही है। क्योंकि बार बार हम शरीर अभिमान से न्यारे होते जाएंगे, निराकारी अवस्था में, फरिश्ता की स्थिति में देहाभिमान छूट जा जाएगा और हमारी हद की बातें छूटती जाएंगी, तो हम बेहद भी चली जाएंगे। तो हमारे अंदर जो भावनाएं निकलती है वो ऑटोमेटिकली दूसरों को पहुंच जाता है। क्योंकि संगमयुगी ब्राह्मणों को विशेष वरदान है प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने का। भविष्य तो हमारा जमा बनता ही है, परंतु प्रत्यक्ष फल क्या, अभी अभी पुरुषार्थ, अभी अभी प्रारब्ध। परंतु हमको प्रयोग करके देखना है कि कहाँ तक हम ये प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति का अनुभूति कर रहे हैं। तो इसलिए हमने पहले भी बताया कि हम ये प्रयोग करके देखें अपनी मनसा सेवा का रिजल्ट अपने ऊपर पहले, फिर साथियों के साथ, जिसके साथ हम रहते हैं उसके प्रति हमारे मन में किस प्रकार का विचार चलता है, कौन सी प्रकार का चिंतन चलता है। तो अगर हमारे शुभ भावना है, शुभ चिंतक है, तो वो वातावरण के ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ता। बाबा कहते हैं ना कि जो सदैव दूसरों के लिए शुभ चिंतक रहते हैं, उनका सबका उनके साथ प्यार हो जाता है, सब उनको सहयोग देने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये प्रूफ है, अगर हम सदैव सबके लिए शुभ चिंतक है तो वो तो उनको पहुंचता है ना, तो वो रिटर्न में हमको स्नेह और सहयोग देंगे। और स्नेह और सहयोग जब बिना मांगे मिल जाता है तो कार्य की सफलता हो जाएंगे। तो एक नए कला, मनसा सेवा करने की कला सीख करके जाएंगे तो अभी नहीं भविष्य में भी, कैसे भी हम स्थिति में हो, चाहे शरीर बीमार है, हमारे पास पैसा नहीं है, हम कहां नहीं जा सकते हैं, परंतु अपने मन तो अपने पास है ना, अपना संकल्प तो अपने पास है ना, तो हम मनसा द्वारा किसी की भी सेवा कर सकते, सिर्फ मनुष्यों की नहीं, तत्वों की भी सेवा कर सकते, प्रकृति की भी हम सेवा कर सकते हैं। परंतु फर्स्ट रिक्वायरमेंट हम अपने मन को अपना मित्र बनाना है, हम अपने मन की सेवा करनी है, दैट इज फर्स्ट। अगर हम अपने मन में सभी के लिए व्यर्थ संकल्प चलाते रहते हैं, माइंडिंग एवरीबॉडीज बिजनेस, फिर अपने मन में कोई शक्ति नहीं रहेगा, तो फिर हम मन को दूसरों की सेवा के लिए यूज नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम फिर से याद दिलाते हैं बाबा के ही महावाक्य, हम सब अपने ऊपर ही दया करें, अपने ऊपर ही कृपा करें, कि आज से लेकर फिर से अपने आप को रिमाइंड कराएं कि हम कभी भी न अपने लिए व्यर्थ सोचेंगे, न किसी के लिए भी व्यर्थ संकल्प चलाएंगे। हरेक के लिए उसकी विशेषता देख करके, उसकी विशेषता के अनुसार उसको स्वमान भी देंगे और हम अपने स्वमान में ही रहेंगे। इस प्रकार से अगर हम दृढ़ संकल्प करके चलेंगे तो मैं समझती हूँ जहाँ पर भी हम होंगे हमारे से निरंतर सेवा होती रहेंगी। बाकी सेवा के लिए कुछ सीमा होता है, मनसा सेवा के लिए कोई सीमा नहीं, आप 24 आवर्स भी कर सकते हो। ओनली द माइंड शुड बी क्लीन, इंटेलेक्ट शुड बी क्लियर, मन साफ रहना चाहिए, बुद्धि स्पष्ट रहना चाहिए, तो फिर ऑटोमेटिकली बाबा ऐसे आत्मों को विश्व की सेवा करने के लिए जरूर यूज करेंगे। तो यही आशा रखते हैं कि इस बारी आप सभी भी ऐसे बाबा से इस कला को अपने जीवन में धारण करने की गिफ्ट अपने साथ ले जाएंगे और उससे अनेक आत्मों की सेवा करते हुए दुआओं के पात्र बनते इस ब्राह्मण जीवन में उड़ते रहेंगे और दूसरों को उड़ाते रहेंगे। ओम शांति।